तो इस श्लोक में गजेंद्र प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के महिमा का। इस प्रार्थना में उद्घाटन करते हैं कि भगवान सब वस्तु के कारण हैं, या हर वस्तु भगवान के द्वारा निर्मित है, या हर वस्तु भगवान में ही स्थित है, फिर भी भगवान उससे पृथक हैं। भगवान सब कुछ है, सब में है, फिर भी भगवान पृथक हैं। इसलिए वेदांत सूत्र में कहा गया है, ऐसे भागवतम का भी श्लोक में है कि पहला श्लोक मंगलाचरण में सुख गोस्वामी कहते हैं कि कैसे है पहला श्लोक भागवत का पहला श्लोक, हाँ, जन्मादस यतोन बयादि तरत चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयन्ति असुरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान जो सत्य हैं, त्रिसत्य हैं, परम सत्य हैं, और हर परिस्थिति में वो सत्य हैं, परम सत्य हैं, सत्यम परम धीमहि, उनसे बड़ा और कोई सत्य नहीं है। हरिओम तत्सत, भगवान ही परम सत्य हैं। इसे लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। जब कोई मर जाता है तो लोग तब उपदेश करते हैं राम नाम सत्य है, और जब जिंदा रहता है तो कहता है कि ये काम करो, पैसा कमाओ, नौकरी करो, शादी करो, परिवार बसाओ। लोग बोलते हैं क्या कर रहे हो, क्या राम नाम जप रहे हो, लेकिन मरने के बाद लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, और यही सबका गत है। राम नाम सत्य है और यही सबका गत है, माने सबकी यही गति होने वाली है। जब राम नाम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, भगवान परम सत्य हैं, तो उनसे जो वस्तुएं हैं वो भी सत्य हैं, जो भगवान की सृष्टि है वो भी सत्य है। ये मायावाद दर्शन में कहा कि सब वस्तु जो है असत्य है। मायावाद दर्शन कहता है कि हर वस्तु असत्य है, लेकिन वैष्णव सिद्धांत में कहा कि नहीं, हर वस्तु शाश्वत है, लेकिन कुछ क्षणभंगुर है, कुछ जो है कुछ समय के लिए है लेकिन है, और कुछ नित्य है, कुछ नित्य है और कुछ अनित्य है, कुछ पुरातन है और कुछ नवीन है, कुछ दृश्य है और कुछ अदृश्य है। जो ये दृश्य जगत है ये पहले अदृश्य था, जो वस्तु दृश्य है कभी अदृश्य होता है, जो अदृश्य हो कभी दृश्य होता है। जैसे सूर्य जो है अस्ताचल में जब चले जाते हैं तो अदृश्य हो जाते हैं, लेकिन कहीं दृश्य भी होते हैं। भारत में या कई देशों में, भारत है, चाइना है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बर्मा है, बहुत सारे देश में जब सूर्यास्त होता है तो अंधेरा छा जाता है, लेकिन बहुत सारे देश हैं अमेरिका के जहां सूर्य दिखाई देता है। सूर्य है लेकिन कहीं अदृश्य है और कहीं दृश्य होता है, या दिन में भी कभी कभी सूर्य बादल में अदृश्य हो जाता है, बादल से ढक जाता है, कुहरा में ढक जाता है, और जब कुहरा हट जाता है तो दृश्यमान हो जाता है, दिखाई देने लगता है। उसी तरह हर वस्तु जो है दृश्य या अदृश्य अवस्था में है अपने मूल रूप में, और उस मूल का मूल भी भगवान है। तो जब सृष्टि का लय हो जाता है तो सृष्टि के जितने भी अवयव हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पांच कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, इंद्रियों के तन्मात्रा, रूप, रस, गंध, स्पर्श, मन, बुद्धि, अहंकार, चेतना, आत्मा, परमात्मा, ऐसे संख्य योग में कहीं 24 तत्व का वर्णन है, कहीं 26। तो पांच कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिया, पंच महाभूत, तन्मात्रा और मन बुद्धि अहंकार चेतना, कितना हो गया? और आत्मा, उसके ऊपर परमात्मा। कहीं 26 का भी वर्णन मिलता है, 24 का भगवान कपिल उल्लेख करते हैं। ये जो अवयव हैं प्रकृति के, ये जो भौतिक अवयव हैं, ये रहते हैं। महाप्रलय में या प्रलय में भगवान महाविष्णु के शरीर में स्थिर हो जाते हैं। जैसे कभी कभी कछुआ जो है अपना शरीर बाहर निकालता है, के कछुआ का एक ये होता है, कवच होता है, तो संकट के समय में अपने शरीर को उसमें ये कर लेता है, संवरण कर लेता है, बिल्कुल उसके अंदर स्थिर कर लेता है। बाहर से बाहरी इंद्रियों को अंत, जैसे योगी जो है अपनी इंद्रियों को, बाह्य इंद्रियों को योग साधना के द्वारा अंतर्मुख कर लेता है, बाह्य इंद्रियों का अंतर्मुख करके स्थिर हो जाता है प्राणायाम के द्वारा, अपने मन को, बुद्धि को, प्राण वायु को भी स्थिर कर लेता है। जो बहिर्मुख है अंतर्मुख हो जाता है, अंदर में भगवान को देखने लगता है। जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज ने बाह्य इंद्रियों के क्रिया को अंतर्मुख करके भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे, बाहर क्या हो रहा है उनको मालूम, अंतर्मुखी। बहिर्मुख जो है वो अंतर्मुख हो गया। तो कछुआ जो है अपने सारी बाह्य इंद्रियों को उस कवच में अंदर कर लेता है, और जब समय अनुकूल आता है तो बाहर कर लेता है। उसी तरह भगवान महाविष्णु इस सृष्टि को अपने अंदर कर लेते हैं, संवरण कर लेते हैं, बटोर लेते हैं। जैसे सूर्यास्त के समय सूर्य अपने किरणों को बटोर लेते हैं, सूर्य जब जाते हैं अस्ताचल में, सन सेटिंग होता है तो अपने प्रकाश को ले लेते हैं, तो उतना समय अंधकार छा जाता है। तो प्रलय के समय अंधकार छा जाता है। भगवान सृष्टि के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं, अवयव हैं, सबको अपने में धारण कर लेते हैं। और जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके श्वास वायु से सब फिर धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। भगवान जब श्वास छोड़ते हैं तो सारे तत्व बाहर आने लगते हैं। तो यहां पर गजेंद्र कहते हैं कि आप सब कुछ के कारण हैं। ओम नमो भगवते तस्मई, हे भगवान आपको नमस्कार है। ओम नमो भगवते तस्मई, ओम मतलब ओम जो है वैदिक मंत्र का प्रारंभ में ओम शब्द आता है, अंत में क्या आता है, तत्सत, हरि ओम तत्सत। तो ओम अ उ म तीन का द्योतक है, अ उ म मिलकर ओम होता है। तो इसमें भगवान को तीन रूप में गुणावतारों में बताया गया है। भगवान के तीन गुणावतार हैं, जैसे विष्णु हैं, ब्रह्मा हैं, शिव हैं। तो भगवान जो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार भी करते हैं, वही भगवान अलग अलग कार्य करते हैं। भगवान एक हैं लेकिन भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करते हैं, ब्रह्मा के रूप में भी, शिव के रूप में भी। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष जोगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु यह संभुताम अपि तथा समुपैति कार्याद गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान कभी कभी शिव भी बन जाते हैं, कभी ब्रह्मा भी। पीछे का श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, जब कोई योग्य पात्र नहीं होता है तो भगवान अपने गुण से गुण का गुण में विक्षोभ पैदा करते हैं। जैसे दूध में विक्षोभ पैदा होता है क्षार डालने से, दूध में छाछ डाल दीजिए तो उसमें क्षोभ पैदा होता है तो दही बन जाता है। तो दही का मूल, दही का जो ओरिजिन है दूध ही है। उसी तरह शिव ब्रह्मा के भी कारण भगवान है, इसलिए सब कारण कारण। तो ओम नमो भगवते, हे भगवान आपको नमस्कार है। तस्मयी यद यद चिदात्मकम पुरुषाया आदि बीजाय, आप ही परम पुरुष हैं और इस प्रकृति के आदि बीज हैं, सब कुछ के बीज आप हैं। जो भी वस्तु है उसके मूल उत्पत्ति का बीज आप हैं। बीजम मम सर्वभूतानम, गीता में भगवान कहते हैं मैं सब कुछ का बीज हूं। जैसे बीज निगम में लोग जाते हैं सब्जी के लिए बीज लेने के लिए, कोई प्लांट लगाने के लिए बीज लेने के लिए, नहीं बीज का मूल क्या है। लोग बोलते हैं कि आम का पेड़ पहले था कि आम का फल पहले था। प्रश्न लोग करते हैं कि पहले पेड़ था कि फल था, क्या बताएंगे आप। गांव में कभी कभी हम लोग बचपन में लोग पूछते थे कि पहले आम का पेड़ था कि फल था, तो आप क्या उत्तर देंगे, पहले पेड़ था कि फल था। फल था, पहले बीज था। अब बीज का स्रोत क्या है, तो भगवान है। बीजम माम सर्वभूतानाम, अहम बीज प्रदह पिता, अहम सर्व जोनिषु बीज प्रदह पिता। भगवान कहते हैं मैं सब जोनियों में बीज प्रदान करता हूं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि पहले बीज था तो बीज कहां से आया। अब बोलेंगे बीज था लोग, तो बिना पेड़ का बीज कहां से आया, तो बोलेंगे नहीं पहले पेड़ था, तो बोलेंगे तो पेड़ कहां से आया, पेड़ कैसे हो गया बिना बीज का। अब बीज बोलेंगे तो फिर बोलेंगे तो फिर वही, इसका कोई उत्तर नहीं। इसका उत्तर गीता में ही है, इसका उत्तर भगवान देते हैं कि बीज मुझसे आता है, हर चीज का बीज का कारण मैं हूं, इसलिए सर्व कारण भगवान है। तो गजेंद्र बहुत सुंदर यहां सिद्धांत दे रहे हैं, ऐसे भगवान का ध्यान कर रहे हैं। गजेंद्र भगवान को समझ गए कि आप ही सब कुछ के कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं है। एवं व्यवस्थितो बुधया समाधाय मनोहृदय जजाप परमम जाप्यम प्रागजन मनुशिक्षितम। ये जो प्रार्थना वो बोल रहे हैं वो पूर्व जन्म में गजेंद्र याद कर लिए थे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर व्यक्ति को कुछ न कुछ प्रार्थना याद करना चाहिए, कुछ न कुछ स्तुति जो है, ऐसे मंत्र है, कुछ न कुछ मंत्र याद करना चाहिए। से गीता में भी अर्जुन प्रार्थना किए भगवान, तमादिदेव पुरुष पुराण तमस्य विश्वस्य परम निधानम तमम व्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तम पुरुषो मतो में पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम। अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं, हर जितने भी भक्त हैं भगवान को प्रार्थना करते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज नरसिंह देव का प्रार्थना किए, ओम नमो भगवते महानृसिंहाय दृष्टा कराल बदनाय घोर रूपाय वज्र नखाय ज्वाला मालिने मम विघ्नान पच पच मम भयान भिंदी भिंदी मम शत्रुन विद्रावय विद्रावय। ऐसे भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, हर भक्तों का, कुंती महारानी का प्रार्थना है, ध्रुव महाराज का प्रार्थना है। तो लोकनाथ महाराज उस दिन प्रवचन कर रहे थे संडे को, तो प्रभुपाद जी उसमें तात्पर्य में लिखे कि हर भक्त को कुछ न कुछ प्रार्थना करना चाहिए। भक्त लोग करते हैं उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युर नमाम्यहम देवता कार्य सिद्धार्थम सभा अस्तंभ समुद्भवम श्री नृसिंहम महावीरम। ऐसे भगवान की प्रार्थना गजेंद्र पूर्व जन्म में प्राग जन्म अनुशिक्षितम, वो पूर्व जन्म में याद किए थे। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कभी कभी जो प्रार्थना हम अच्छी तरह से याद कर लेते हैं, हमारे मन में बुद्धि में इंद्रियों में घर कर जाता है, तो पशु योनि में भी वो याद रहता है। गजेंद्र हाथी योनि में भी उनको प्रार्थना याद हो गया है। राजर्षि भरत जब मृग शरीर को प्राप्त है तो उस समय भी उनको प्रार्थना याद आ गया। तो जो प्रार्थना हम याद करते हैं प्रतिदिन जिसको बोलते हैं वो हमें आगे भी काम आता है। तो गजेंद्र को प्राग जन्म अनुशिक्षितम, प्राग जन्म माने पूर्व जन्म में, अनुशिक्षितम माने जिन्हों शिक्षा लिया था, अनुशिक्षितम जिसको प्रैक्टिस किया था याद आ गया, तो वही प्रार्थना ये बोल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान सब कुछ के कारण हैं और सब कुछ के आश्रय भी हैं। अब सब कुछ उन्हीं से निकलता है, उनमें फिर विलीन भी हो जाता है। जैसे मिट्टी का पात्र मिट्टी से बनता है और मिट्टी पर ही टिका रहता है और फिर मिट्टी में मिल जाता है, और उस मिट्टी के पात्र को भी मिट्टी के ही अवयव पर बनाया जाता है, चाक पर। कुम्हार का चाक होता है वो भी मिट्टी का ही अंश होता है, से पत्थर है वो भी मिट्टी का अंश है, मिट्टी ही पत्थर के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चाहे हीरा के रूप में, सोना के रूप में, या कोई भी खनिज के रूप में, मिट्टी ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अनेक खाद्य पदार्थ के रूप में भी मिट्टी ही ट्रांसफॉर्म होता है। तो मिट्टी के ही अवयव पर मिट्टी का पात्र मिट्टी से बनता है और बनाने वाला भी मिट्टी का ही बना है, कुम्हार का भी शरीर मिट्टी का बना है। इसलिए प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कुम्हार का चाक जिससे मिट्टी का पात्र बनता है, मिट्टी का अंश होता है चाक भी, और जिन अवयवों से पात्र बना रहता है वे भी मिट्टी के होते हैं। जैसा कि श्रुति मंत्र से पुष्टि होती है, ये तो या इमानी भूतानी जायन्ते ये न जातानी जीवंती यत प्रयंत भी संविशंति, उसी में फिर विलीन हो जाता है। तो कुम्हार का शरीर भी मिट्टी का बना है, जो मिट्टी से पात्र बनाता है। आप लोग देखे होंगे कुम्हार जब मिट्टी से पात्र बनाता, कितने लोग देखे हैं मिट्टी को एक करके लुंदा बनाता है, फिर चाक पर रखता है, फिर उसको घुमाता है, फिर हाथ से बनाता है। तो मिट्टी से मिट्टी का पात्र बनता है और बनाने वाला भी मिट्टी का ही उसका शरीर बना है, और चाक भी मिट्टी का है, और बनाने के बाद भी उस बर्तन को कहाँ रखता है, जमीन पर रखता है, उसका धरातल जो है भूमि ही है। इसका कहने का अभिप्राय यह है कि हर वस्तु भगवान पर अवलंबित है, भगवान ही वस्तु को धारण किए हैं। विराट रूप में अर्जुन देखे कि भगवान के शरीर में सब कुछ है, खम अग्नि वायु सलिलम महेंद्र ग्रह, ग्रह हैं, तारा हैं, पर्वत हैं, शरीर समुद्र से हरे शरीरम, ये शरीर समुद्र भी भगवान के शरीर हैं। शरीर समुद्र से हरे शरीरम, जो कुछ भी जगत में व्यक्त दिखाई देता है सब भगवान का विराट शरीर है या विराट शरीर में है। अर्जुन भगवान के विराट शरीर में देखे समुद्र को, पर्वत को, नदी को, सूरज को, चंद्रमा को, अनेक सर्पों को, ऋषियों को, पृथ्वी को, हर वस्तु को, तल अतल बीतल महातल रसातल पताल, ब्रह्मलोक सतलोक जनलोक तपलोक, सारे ब्रह्मांड को भगवान के शरीर में देख रहे थे। पश्यामि देवास्तव देव देहें, इसका अर्थ है कि भगवान सब कुछ को धारण करते हैं। सूत्रे मणि गणाइव, जैसे फूल को कौन धारण करता है? धागा, धागा को तोड़ देंगे तो फूल बिखर जाता है। उसी तरह हर वस्तु को भगवान धारण किए हैं अपने में, सब वस्तु को भगवान धारण किए हैं। खम अग्नि वायु, खम मने आकाश, अग्नि वायु, खम अग्नि वायु सलिल पानी, महिंद्र पृथ्वी, अनेक ग्रह हैं, तारा हैं, और द्रुमादि वृक्ष हैं, सब भगवान धारण किए हैं सबको द्रुमादि। ऐसे भगवान जो सब कुछ के कारण हो करके भी इसे फिर भी पृथक रहते हैं, सब कुछ को धारण करके भी उससे अलग ही रहते हैं, उसके कार्य से और कारण से फिर भी अलग रहते हैं। भगवान सबके हृदय में भी हैं फिर भी अलग रहते हैं, रह करके भी बहुत नजदीक हैं और बहुत दूर हैं। भगवान हमारे सबसे नजदीक हैं, हृदय में रहते हैं। सबसे हमारा कोई नजदीकी है तो कौन है? भगवान है, जेदम हमारे हृदय में चिपक कर रहते हैं। हमारे परम सुहृद कौन है? तो मित्र। परम सुहृद मित्र कौन है? भगवान। सुहृदम सर्वभूतानम, भगवान सबके मित्र हैं, क्योंकि सबके दम साथ में रहते हैं, अच्छे दिनों में भी बुरे दिनों में भी। भगवान ये नहीं सोचते हैं कि इसका बुरा दिन आ गया तब चलता हूं, नहीं, बुरे से बुरे दिनों में भी भगवान हमेशा साथ में रहते हैं। इसलिए भगवान ही हमारे मित्र हैं, सुहृद हैं, एकदम हमारे साथ रहते हैं और हर चीज हमारा ध्यान रखते हैं। योग क्षेमम वहाम्यहम, ऐसे भगवान बहुत पास रह करके भी बहुत दूर भी हैं। तद दूरे तद अवंती के, तद दूरे बहुत दूर भी हैं और बहुत पास भी हैं। भगवान को इसलिए अचिंत भेदा भेद कहा गया है। भगवान हैं भी और हमारे अंदर नहीं भी है, ये दोनों कैसे हो सकता है? लेकिन भगवान के लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं है। किम आश्चर्यम, भगवान के लिए कुछ भी आश्चर्य नहीं है। वो सब कुछ के अंदर रह करके भी उसे पृथक रहते हैं। जैसे पानी में मछली रहती है फिर भी पानी से पृथक है, पानी में रह करके भी उसका व्यक्तित्व पानी से पृथक रहता है। भगवान इस विराट जगत को धारण करते हैं लेकिन फिर भी उनका व्यक्तित्व इसे पृथक रहता है। जैसे पानी में मछली है लेकिन फिर भी पानी से उसका व्यक्तित्व अलग है, पानी में रह करके भी पानी में जो अप्लावित नहीं होती है, ऐसा नहीं कि पानी में रहने से सड़ जाती है। कोई वस्तु को पानी में रख दीजिए ज्यादा समय तक तो सड़ जाता है पानी से, या किसी आपको पानी में रख दिया जाए तो आप मर जाएंगे, दम घुटने लगेगा, या शरीर मरने के बाद पानी में ही छोड़ दीजिए तो सड़ जाता है, पानी से प्रभावित है। लेकिन मछली पानी में है लेकिन फिर भी पानी से प्रभावित नहीं होती है, बल्कि पानी से बाहर कर देंगे तो मर जाती है। पानी से बाहर करेंगे तो मछली मर जाती है लेकिन पानी में वो स्वाभाविक रहती है, पानी ही उसका जीवन है। इस तरह परमेश्वर भगवान रामचंद्र या भगवान कृष्ण हर वस्तु के मूल कारण हैं। भगवान हर वस्तु के मूल कारण हैं। जन्मा दस येतोन बयादि तरत चारथे स्वभिज्ञ स्वराट, फिर भी परम स्वतंत्र हैं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भगवान के सिर पर कोई नहीं है, वो सबसे बड़े हैं। हम लोगों के सिर के ऊपर कोई न कोई है, किसी के ऊपर निव भक्त है, तो उसके ऊपर निभग डायरेक्टर है, तो निभग डायरेक्टर के ऊपर टेंपल कमांडर है, तो उसके ऊपर वाइस प्रेसिडेंट है, तो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के ऊपर जीबीसी है, ऐसे कोई ना कोई ऊपर ऊपर है, बहु के भी ऊपर सास है, सास भी लोग कहते हैं कभी बहू थी सास भी जब बहू आ जाती है तो बहू के ऊपर राज करती है, ऐसा करो ये करो, सास शासन करती है ना बहू के ऊपर, लेकिन वो भी कभी बहू थी लेकिन भगवान के ऊपर कोई नहीं है, भगवान सबसे उनके सिर पर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, और जन्मादि सबके आदि पुरुषाया विधि पुरुषाय आदि बीज आय सब चीज के आदि बीज वही हैं, वो सब कुछ सबके पुरनिया हैं भगवान, सबके दादा परदादा वही हैं, उनसे पुराना कोई नहीं है। कोई कहे कि नहीं मैं हमारे गांव में हमारे दादाजी सबसे उम्र के हैं, तो बोलते हैं कि इस गांव में हमारे पिताजी से अधिक उम्र के अब कोई नहीं रह गया है, लेकिन भगवान से कोई ज्यादा उम्र का नहीं हो सकता है, भगवान सबसे पुरातन है, सबसे पुरातन पुरुष वही हैं, क्योंकि आदि बीज आय और शाश्वत हैं, फिर भी इसलिए भगवान जन्मादि सबके जन्म के आदि हैं, गोविंदम आदि पुरुषम उनका कोई आदि नहीं है। गोविंद नाम से प्रसिद्ध कृष्ण परम नियंता हैं, उनका शरीर नित्य आनंदमय तथा आध्यात्मिक है, सबको असंख्य पुतला भगवान बना दे। कल व्हाट्सएप पर एक मैसेज में पढ़ रहा था तो उसमें दिया था भावनगर से भक्त लो या बल्लभ विद्यानगर से है, तो मैं पढ़ता नहीं हूं प्राय, लेकिन ऐसे देख रहे मैं डिलीट कर देता हूँ, कितना आदमी पढ़ेगा, तो देख लिया कि भगवान असंख्य पुतला बनाए हैं, भगवान सबसे बड़े कलाकार हैं, कुम्हार घड़ा बनाता है, कोई शिल्पीकार मूर्ति बनाता है वो भी कलाकार है, लेकिन सबसे बड़ा कलाकार भगवान है कि असंख्य मूर्ति बना दिए हैं, हर मूर्ति भिन्न भिन्न है, भारत में 1 अरब से ज्यादा लोग हैं लेकिन सबका रूप रंग बोलने का सब अलग अलग है, एक जैसा नहीं, कोई ऐसे नहीं कि अपने पति के भ्रम में अपने ससुर को पकड़ लिए, ऐसा नहीं होता है कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं हुआ कि स्त्री अपने पति के भ्रम में अपने ससुर को ही पकड़ लिए, ऐसा नहीं होता है, सब में भगवान इतने कलात्मक ढंग से इतने साइंटिफिक ढंग से बनाए हैं कि सब में अंतर है। देखें कोई ऐसा होता है कि आदमी कंफ्यूज होता है, जरूर कुछ न कुछ शक्ल में अगर मान लीजिए एक रूपता हो तो वाणी में जरूर अंतर होगा, आंख में या कुछ न कुछ जरूर शटल जरूर डिफरेंस होगा, तो भगवान कितने बड़े कलाकार हैं कि सबको अलग अलग साचा में ढाले हैं, भगवान के पास कितना फर्मा होगा, कितना साचा होगा कि अलग अलग सबको ढाल दिए हैं, कोई एक रूप नहीं है, अनेक रूप रूप आया, अनेक हैं और अनेक रूप में हैं, और उसके बाद विभिन्नता भाषा का बोलने का चलने का शैली भी देखने का हर चीज अलग है, भगवान कितने बड़े, तो वो लिख उसमें लिखा था कि भगवान बड़े कलाकार हैं, असंख्य पुतला बना दिए हैं, एक कलाकार कह रहा कि हे प्रभु आप वास्तव में बड़े कलाकार हैं, आप असंख्य पुतला बनाए हैं और हम भी पुतला बनाते हैं, हम जो पुतला बनाते हैं लोग खरीद कर ले जाते हैं और उस पुतला के सामने लोग शीश झुकाते हैं, जैसे मूर्तिकार जो मूर्ति बनाया है लोग सिर झुकाते हैं प्रणाम करते हैं, लेकिन आप ऐसा पुतला बनाए कि सब आपस में ही लड़ते हैं, वो कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके जो पुतले हैं आपस में लड़ते हैं, लेकिन हम जो पुतला बनाए हैं उसके सामने लोग शीश झुकाते हैं, यह जब मैं समझता हूं तो शर्म आ जाती है। मैंने उसका कहने का अभिप्राय यह है कि आप ही वास्तव में सबसे बड़े कलाकार हैं कि आप हमको बनाए हैं, हमारे जैसे पुतला बनाए हैं और मैं भी एक ऐसा पुतला बनाता हूँ कि उसको लोग कीमत देकर ले जाते हैं और उसको प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं, और एक उसमें दोष भी दिखा रहा है कि आप जो पुतला बनाते हो सब आपस में लड़ते हैं, हम लोग नहीं लड़ते हैं आपस में, लेकिन हम जो पुतला बनाए हैं उसको तो लोग खरीद कर ले जाते हैं, उसके आगे शीश झुकाते हैं, इसका क्या अभिप्राय? ये सबसे बड़ा कलाकार है क्या? उस कलाकार के भी कलाकार भगवान है, उस वस्तु को भी संगमरमर को ही भगवान ने बनाया है, बनाने वाले का ब्रेन भी भगवान ने बनाया है, तो भगवान ही वास्तव में सबसे बड़े कलाकार हैं। ये सब पुतला तो बोलता भी है, चलता है, खाता है, पीता है, हर चीज कह करता है, ये पुतला का महत्व तो ज्यादा है जो भगवान ने बनाया है, और हम भगवान के पुतले बने हैं और हम भी पुतले बनाते हैं, तो भगवान का सृष्टि बहुत जो है वैज्ञानिक है, अत्यंत वैज्ञानिक है। इसलिए भगवान को समझना, उसे पहले भगवान के सृष्टि को समझना, ये शरीर हम कैसे शरीर में है, कैसे शरीर में अलग अलग वस्तु बन रहा है, भोजन से खून भी बनता है, रस भी बनता है, मज्जा बनता है, मांस बनता है, कफ वात पित्त हड्डी नाखून सब कुछ बन रहा है, भोजन से हमारे फूड प्रोडक्ट के अनलिमिटेड केमिकल बन रहे हैं, बाय प्रोडक्ट कितने केमिकल हैं हमारे भोजन के, हमारे शरीर में कितने बाय प्रोडक्ट केमिकल बनते हैं, कैसे बनता है और कैसे हजम होता है भोजन, हम तो मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, खा जाते हैं, लेकिन अंदर कैसे पचता है, उसको पचाने का भी काम, उसको अलग अलग चीज बनाने का काम, आ जगह पर पैकिंग करने का, पैकिंग भी हो रहा है, सप्लाई भी हो रहा है शरीर में, कैसे हो रहा है हम नहीं जानते हैं, वैज्ञानिक आज तक भी नहीं समझ पाते हैं कि गाय एक ऐसी मशीन है जो घास से दूध बना देती है, आप गाय का नकल कर सकते हैं, घास खाकर दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, या घास से दूध बनता है तब उसको घास को ग्राइंडिंग करके प्राप्त कर सकते हैं? नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने मधुमक्खी बनाया है, मधु फूल से मधु मधुमक्खी प्राप्त कर लेती है, भगवान ने क्या उसमें कला बनाया है? आप फूल को चबाइएगा तो आपको मधु का स्वाद नहीं आएगा, या हम भोजन करते हैं वो खून बन जाता है, खून के रूप में बदल जाता है, भगवान का कितना बड़ा ये सृष्टि वैज्ञानिक है, इसको आज तक वैज्ञानिक लोग अभी नहीं समझ पाए हैं, अपने शरीर को ही हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम भोजन कैसे पच रहा है, इसमें अलग अलग चीज कैसे निर्माण हो रहा है, तो भगवान को समझना तो बहुत बड़ी बात है, भगवान को भगवान ही समझा सकते हैं, भगवान ही ज्ञान देते हैं। तो गजेंद्र कहते हैं कि आपको कोई जान नहीं सकता है, जब आप जनाना चाहते हैं तब कोई जानता है, आप किसी पर कृपा करते हैं तब कोई जान पाता है, अन्यथा कोई नहीं जान सकता है आपको, क्योंकि आप सब कुछ के कारण हैं। आप जब ज्ञान देते हैं तो लोग समझते हैं, जब आप दिखाने का शक्ति देते हैं तो लोग देखते हैं, जैसे सूर्य भगवान का शक्ति है, तो सूर्य जब उदय होते हैं तब हम देखते हैं, सूर्य के द्वारा मतलब सूर्य भगवान का इस भौतिक ब्रह्मांड का नेत्र है, विराट शरीर में सूर्य नेत्र हैं, सस्य सूर्य नेत्र यो, तो सूर्य भगवान के नेत्र हैं, तो भगवान जब देखने की शक्ति देते हैं तब हम देखते हैं, सूर्य आते हैं तब हम देखने लगते हैं, आज सूर्यास्त हो जाता है तो हम कहाँ देख पाते हैं, सूर्यास्त होने के बाद आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे, बिजली ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, अग्नि ना हो तो हाथ का रेखा भी नहीं पढ़ पाएंगे। सूर्यास्त होने के बाद आप अपने हथेली के रेखा को भी नहीं पढ़ पाएंगे, कहेंगे बिजली जलाओ, टॉर्च लाइट लाओ, ये बिजली भी, टॉर्च लाइट भी, अग्नि भी, यह भी भगवान का शक्ति है, यह भी सूर्य का ट्रांसफॉर्मेशन है। सूर्य से अग्नि पैदा होता है, सूर्य से बिजली पैदा होता है, सूर्य से सौर ऊर्जा पैदा होता है, जितना भी ताप है प्रकाश है सूर्य से आता है, उसका विस्तार होता है। सूर्य से वाष्प बनता है, बादल बनता है, वर्षा होता है, बिजली पैदा होता है, सौर ऊर्जा से हम बल्ब जलाते हैं। तो जो भी प्रकाश है सूर्य का रूपांतरण है, और सूर्य भगवान का नेत्र है, तो भगवान के नेत्र से हम देखते हैं, हम इस नेत्र से नहीं देखते हैं। अगर इस नेत्र से हम देखते तो अंधेरे में आप क्यों नहीं देख लेते हैं? आप कितना भी प्रयास करिए, इस आंख को कितना भी फाड़ फड़ देगी नहीं देख पाएंगे। इसका अर्थ यह है कि हम भगवान के नेत्र से देखते हैं। भगवान जब देखते हैं तब हम देखते हैं, भगवान श्वास लेते हैं तब हम श्वास लेते हैं, भगवान जब कुछ करते हैं तब हम कुछ करते हैं। अब भगवान जब योग निद्रा में सो जाते हैं तो सारी सृष्टि सो जाती है। भगवान जगते हैं तब जीव जगते हैं, भगवान सुनते हैं तब हम सुनते हैं, भगवान जब सो जाते हैं तो नहीं देख पाते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य, जब सूर्य उदय होते हैं तब हम देखने लगते हैं। तो बोले बिजली जलाते हैं, तो बिजली भी सूर्य का ही रूप है। तो मैंने सब कुछ के कारण भगवान है, आपके खाने के पीछे, चलने के पीछे, सूंघने के पीछे, सुनने के पीछे, देखने के पीछे कारण कौन है? भगवान है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि हम कारण हैं, मैं हूं, मैं हूं, मैं किया हूं, मैं किया हूं। तो बोलते हैं घर कौन बनाया है? तो मैं बनाया हूं। ये माला कौन बनाया? तो मैं बनाया हूं। मैं करता है। हनुमान प्रभु एक बार कह रहे थे कि जो मैं करता है ना वो बकरा है। हनुमान प्रभु एक बार कह रहे थे, आ जो मैं ना कहते नहीं, मैं नहीं, सब भगवान का है। ये प्रभु जी आपका घर है? तो नहीं, सब भगवान का घर है, सब कुछ भगवान का, मेरा क्या है? आप किए तो नहीं, मैं कौन हूं करने वाला? भक्त लोगों को सब ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है। जो मैं कहता है मैं, बकरा हमेशा मैं कहता है, मैं, तो क्या होता है? उसको लोग तलवार से काट देते हैं। हनुमान बोलते जो मैं करता है वो कसाई उसको काट देता है, और जो मैना कहता है तो उसको लोग दाना पानी खिलाते हैं, मैने को लोग पिंजड़े में रख करके भी उसको दाना चुमाते हैं। इसलिए मैना करना चाहिए, मैं नहीं करना चाहिए, मैं किया हूं। हर चीज में आदमी अपने को मानता है कि यह हमारे चलते चल रहा है सब कुछ, ये फैक्ट्री को इतना प्रॉफिट मैं किया हूं, ये परिवार को पढ़ा लिखा कर सब कुछ घर मकान मेरे द्वारा हुआ है। बोलते हैं ना कि मैं सब कुछ किया हूं, इन लोगों को पढ़ा लिखा कर नौकरी लगाना, घर मकान बनाना, शादी विवाह कराना, वास्तव में मैं भी उसका ही अंश हूं, भगवान का अंश हूं। मेरे अंदर भगवान ही वो शक्ति दिए हैं, शक्ति बुद्धि भगवान दिए तब मैं किया हूं। अगर वो शक्ति बुद्धि नहीं देते तो मैं कहां से करता? भगवान ही जीव को ऐसा शक्ति देते हैं, वैसा बुद्धि प्रदान करते हैं, वैसी प्रेरणा देते हैं, वैसा इंस्पायर करते हैं, तब वो कुछ करता है। तो नहीं कर सकता है बिना भगवान के प्रेरणा से। तेरी प्रेरणा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गाते हैं ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल गई है, करता नहीं हूं कुछ भी पर काम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भक्त लोग ऐसा कहते हैं, तूफान आंधियों में तुमने ही मुझको थामा, तेरा कर्म ही मुझ पे सरेआम हो रहा है, मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। वास्तव में भगवान की कृपा से ही सब कुछ हो रहा है, चाहे आप बुद्धिमान बन जाइए, चाहे वैज्ञानिक बन जाइए, चाहे नलायक बन जाइए, उसके पीछे शक्ति जो है भगवान का ही है। आप उसका दुरुपयोग कीजिए चाहे सदुपयोग कीजिए, भगवान ही शक्ति दिए हैं ना। भगवान किसी को चाकू दिए हैं सब्जी काटने के लिए, और कोई चाकू से पॉकेटमारी करता है। हम बचपन में हम दो मित्र थे, तो बाजार में कुछ पैसा मिला था तो दो चाकू खरीदे हम लोग, बहुत छोटे हुए तो हम लोग कहे कि पॉकेट मारेंगे, बहुत छोटे उम्र के थे। तो बाजार में चाकू दो खरीदे तो दोनों आदमी हम लोग कहे कि किसी का पॉकेट मार सकते हैं हम लोग। हम लोग को कुछ मतलब कैसे पॉकेट मारा जाते, कहते हम लोग एक पॉकेट मार कर पैसा हम लोग बना सकते हैं। तो हम लोग आ रहे थे तो बैलगाड़ी था, उस पर सब्जी लदा हुआ था टमाटर। तो हम लोग कहे कि पहले इसी को ये करते हैं, तो गोनी काट करके टमाटर खा रहे थे। अब बैलगाड़ी चलाने वाला बेचारा अकेले था, बैल को चला रहा था, और पीछे हम लोग बैठे थे खा रहे थे टमाटर उसका। फिर बाद में हम लोग जब गाड़ी कुछ समय के बाद हम लोग के गंतव्य से दूसरे तरफ जाने लगी तो उतर गए। तो हम लोग जाने लगे तो रास्ते में एक व्यक्ति आया, जवान नौजवान मतलब 25 का होगा, हम लोग 11-12 वर्ष के थे। तो वो हमारे गले में जो दुपट्टा था उसको छीनने लगा, और हमारे साथ जो हमारे मित्र थे आगे निकल गए थे करीब 100 मीटर, ऐसे छीनने लगा गमछा को माने लेने के लिए। तो हम पकड़ने लगे तो उसको आवाज दिए कि आओ 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 ये छीन रहे। तो आया वो, तो हम दोनों आदमी ये लगे करने, तो मैं कहा कि चाकू निकालो चाकू से इसको हम लोग डराएंगे, हम लोग से मतलब मजबूत पड़ रहा है। तो चाकू वो निकाला तो चाकू ही छीन करके वो भाग गया हम लोग इस तरह से प्लानिंग किए थे, लेकिन अपना प्लानिंग क्या था, हम लोगों को प्लानिंग किया था कि पॉकेट मारी करेंगे, लेकिन वो चाकू ही चोरी हो गया। इस तरह से आदमी जो कुछ भी प्लानिंग करता है, प्लानिंग भी भगवान के कृपा पर होता है। मैन परपोजेज और गॉड डिस्पोजेज। आदमी कुछ योजना बनाता है लेकिन भगवान उसको विफल कर देते हैं। भगवान जब चाहते हैं तब कोई योजना वो फलीभूत होता है। इसलिए भगवान ही हमारे सफलता के पीछे हैं चाहे असफलता के। लेकिन भक्त लोग सफलता का श्रेय भगवान को दे देते हैं, असफलता को खुद मानते हैं कि हमारी इसमें कमी है, मेरी अर्चना में कमी रह गई, मेरी जो कमी है मैं ही कारण हूं असफलता के, और सफलता का कारण भगवान को देते हैं। मुझ पर रिझो नहीं है भक्त बत्सल प्रभु, क्या मेरी वंदना में कमी रह गई। हमारी वंदना में कोई कमी है तब मुझे सफलता नहीं मिल रही है। हम अपने कमी को ढूंढेंगे, को पकड़ेंगे तो जरूर सफलता होगी। असफल होने के पीछे हम कारण हैं, हम उसको सही उपयोग नहीं करते हैं। सही उपयोग करेंगे तो जरूर होगी। जैसे पिताजी आपको कॉपी किताब सब कुछ देते हैं, आप पढ़ने नहीं जाएगा तो असफल हो जाइएगा। हम लोग बचपन में गाते थे कि पढ़ने जब आदमी जाता है तो जब रिजल्ट आता है फेल हो जाता है। बबुआ पढ़े में कैला खेल, आ जाके मैट्रिक में भैला फेल। पढ़े में आप खेल करेंगे तो मैट्रिक में फेल होंगे। बबुआ लाल शर्म के मारे घरबा छोड़ के, आ संगत धैला चोर के। बबुआ हाथ में ली है भाला, आ घर घर तोड़ चलना ताला अब पढ़ने में खेल करेंगे तो क्या होगा, खेल किए तो फेल हो गए। अब फेल हो गए तो लाज शर्म के मारे घर छोड़कर भाग जाता है आदमी, फिर चोर के संग में भाला लेकर ताला तोड़ने जाता है। तो असफलता के पीछे हमारी कमी है। मुझ पर रिझो न भक्त है भक्त बत्सल प्रभु, क्या मेरी वंदना में कमी रह गई। कुछ कमी है तब हम असफल हो रहे हैं, लेकिन भगवान के तरफ से कोई कमी नहीं, हमारे अंदर कमी है। तब भक्त लोग अपनी कमी को ही अपने ही कारण मानते हैं कि हम ही हमारे अंदर ही कमी है। तो यहां गजेंद्र भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थना में उनके महिमा को उद्घाटित कर रहे हैं, ये आप सबके पीछे हैं। हर व्यक्ति के पीछे भगवान खड़े हैं। भगवान एक होकर के भी अनेक रूपों में सबके पीछे खड़े हैं, बल्कि सबके साथ साथ में रहते हैं, सबका देखभाल करते हैं। फिर भी हम अविद्या में ग्रस्त हैं, ऐसे भगवान को नहीं समझ पाते हैं, जान नहीं पाते हैं कि भगवान ही हमको हमारे सबसे मित्र हैं, हमारे ही भगवान सबसे बड़े कल्याणकारी हैं, हम यह नहीं समझ पाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।